نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں، سمجھ کے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے بھی ہیں، تو پوری شریعت کا حاصل یہ معلوم ہوا کہ زیادہ تر جو ہم لوگ مصائب اور پریشانیوں کا، دکھوں اور تکلیفوں کا، رنج و علم کا جو ہم لوگ سامنا کرتے ہیں، اس کے پیچھے اکثر ہمارے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور اس میں 10 سال 20 سال 30 سال 40 40 سال 50 50 سال تک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں اتر جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ نہیں چھوٹتے. اور دوسرا سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا پھیلا ہوا ہے کہ ہم لوگ عادتا حرام کاموں میں مبتلا بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارا نفس کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہم گناہ گار ہیں. یعنی وہی بات ہوئی کہ بھائی، ایک تو کھاؤ بھی پھر ہو رہا ہوگی کہ ہم اللہ کی کھاتے بھی ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، تو بھائی یہ تو عجیب معاملہ ہے نا، تو پھر کیسے اصلاح ہوگی، کیسے ہدایت ملے گی؟ تو جو پہلے سے متقی پرہیزگار اللہ والا اپنے آدمی اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے اور گناہوں سے بھری ہوئی اس کی زندگی ہو اور کسی طرح ماننے پہ تیار نہ ہو، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ ہدایت بھی مشکل سے پھر ملتی ہے. تو کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں، گناہگار سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ کا خاص پیار ان پر اترتا ہے، خاص اللہ کا کرم ان پر اترتا ہے، اللہ کا خاص فضل ان کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو، جو اپنی نظروں میں پیارا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اپنے محاسن کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، میں ایسا، میں ویسا، میں یہ، میں وہ، میں اتنا پڑھا لکھا، میں اتنا حسین، میں ایسا پیسے والا، میرا یہ سٹینڈرڈ، میرا یہ، یعنی جو بھی اپنی اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں، اس کی وجہ سے وہ دل میں ہر وقت اپنے وجوب میں مبتلا رہتا ہے، اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھتا ہے، اللہ کی طرف نظر نہیں رکھتا، اور ہزاروں گناہوں کے باوجود اپنے آپ کو لوگوں سے برتر اچھا سمجھتا ہے، میں بہت اچھا ہوں. تو حضرت فرماتے تھے اللہ کی نظروں میں انتہائی ذلیل ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ اپنی نظروں میں پیارا بنا ہوا ہے، اپنی نظروں میں پیارا بنا ہوا ہے. تو بھائی، اور وہ انسان جو اپنی نظروں میں برا بنا ہوا ہے، چاہے وہ متقی پرہیزگاری کیوں نہ ہو، چاہے وہ قطب ابدال تک پہنچا ہوا، اللہ والوں کا تو حال یہی ہوتا ہے کہ عادت گناہوں میں مبتلا نہیں رہتے، متقی ہوتے ہیں، اور ایک ایک اللہ کی نافرمانی سے، ذرا سی نافرمانی سے وہ کانپ جاتے ہیں. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سور اور کتے سے بدتر سمجھتے ہیں، دل میں ان کا یہ حال ہوتا ہے. اس لیے شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، سہروردی سلسلے کے بانی، وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ اللہ والے فرشتوں سے اس لیے افضل اور آگے بازی لے گئے ان سے کہ اپنی نظروں میں اللہ والے خود کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق مان لگے، اندر کا حال کیا کہ مراقب یہ رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ سور کتے ہم سے اچھے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سور اور کتے نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، کیونکہ ان کے لیے تو حکم ہوگا جانوروں کے لیے، کنتو ترابا، مٹی ہو جاؤ، سب کیسا مٹی ہو جائیں گے حشر والے دن. تو جانور جو ہوں گے نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں. لیکن اگر کوئی انسان مسلمان ہو چاہے، اگر اللہ نے اس کی پکڑ کر لی کسی گناہ پہ، تو وہ جہنم میں رسید ہوا. اور اللہ کتے بلی سور تو مٹی بن کے جہنم سے بچ گئے، انسان ہو کے، مسلمان ہو کے، ایمان والا ہو کے جہنم میں جل رہا ہے، تو بتائیے جانور اچھے ہو گئے؟ تو اللہ والے اس لیے اپنے آپ کو سور کتے سے بدتر سمجھتے ہیں. لیکن کب تک؟ جب تک خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا، خاتمہ جب تک ایمان پہ نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ایک ریس چل رہی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا نا، ایک ریسنگ ہوتی ہے، لوگ ایتھلیٹکس ہوتے ہیں تو وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جو آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ تھوڑی دوسرے راؤنڈ میں پیچھے چلے جاتے ہیں، جو پیچھے ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. جب تک فنش کی لائن آتی ہے تو اس وقت تک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بعد میں آئے گا. تو مطلب سب کچھ پتا نہیں ہے، ابھی تو دوڑ چل رہی ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، نیک بظاہر ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کے موت سے پہلے جو ہے ان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں، فاسق فاجر، بدماشانہ زندگی ان کی ہوتی ہے، لیکن آگے چل کے شاندار متقی پرہیزگار اللہ والے بن جاتے ہوں، تو پھر ان کا خاتمہ شاندار ہوتا ہے. تو یہ تو بس سانسیں چل رہی ہیں، پتہ تھوڑی ہے کتنے لوگ ایسے हमने देखे, मैंने भी देखे कि दाढ़ी टोपी बादशाह से आगे चल के पैंट शर्ट में आगे दाढ़ी और टोपियां सब साफ कर दी, और कितने ऐसे दाढ़ी मुंडे पैंट शर्ट वाले एक मुट्ठी दाढ़ी में और टखनों से और पैंचे और माशाल्लाह सुन्नत शरीयत पे चल के बहुत बड़े अल्लाह वाले बन के मरे। तो पता थोड़ी है तो जिंदगी, तो जब तक के फिनिश लाइन नहीं आती, जब तक नजर का आलम शुरू नहीं होता, उस वक्त तक खुशी मनानी नहीं चाहिए अपनी, अपने अमाल की अगर कोई नेक अमल कर भी रहा ना अपनी जिंदगी, ना अपने आप को अच्छा समझना चाहिए। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। अल्लाह वाले तो बहुत बात के, सहाबा कराम का क्या हाल था, अशरम मुबशरा पे हम नजर डालें जिनको दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका था आप असलम की वसीले से, कोई उनके शक नहीं था अशरम मुबशरा, लेकिन उनका क्या हाल था, वो हस्तियां कहती थी दरख्त देख के अल्लाह पाक काश तू मैं दरख्त बना देता। वजह क्या है कि अल्लाह तूने इंसान बना दिया, हम फंस गए, अब हम तू हमसे बाजपोश करेगा तो फिर हमारा क्या असर होगा खबर में जब सवालात होंगे, तो वो कांपते थे। बताइए जिनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिला हो अशरम वश्रम में नाम हो उनकी तो ये हालत, और आज हम कहते हैं मैं कौन सा गुनाह करता हूँ भाई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो नेक हूँ बहुत। तो भाई ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए हजरत मौलाना शबरी थानी साहब रहमतुल्लाह ने एक बार मजलिस में अपने मुरीद थे उनको कहा, ये मेरे मुरीद है माशाल्लाह बहुत शानदार है, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अल्लाह वाले, बस एक बुराई है। वो बुराई क्या है, नेक है अपने आप को नेक समझते भी हैं, मुत्तकी है अपने आप को मुत्तकी समझते भी हैं, कहने के बस यही इनके अंदर है भाई, करना सब कुछ है, मुत्तकी बनना फर्ज, फिर फरमाया मुत्तकी बनना फर्ज, खुद को मुत्तकी समझना हराम, नेक बनना फर्ज, खुद को नेक समझना हराम, ये है राज, क्योंकि कुछ पता नहीं है किस बात पे अल्लाह पकड़ ले किस बात पे छोड़ ले। यही चीज को सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ने किसी की तारीफ करी कुछ लोगों ने, औरत आप इतने बड़े औली अल्लाह गौफ और ये और वो ऐसी आपकी करामत है, रोने लगे और फिर फारसी में चंद अशार बोल गए जिसका तर्जुमा ये था क्यों क्या, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जनाजा क्या निकल गया उड़ गया, क्या नजर का आलम तुम लोगों ने देख लिया, क्या फरिश्ते आ गए मेरी रूह निकालने, क्या अल्लाह ने हुक्म दे दिया मेरी मगफरत का, क्या मुझे जन्नत दिखा दी गई, क्या अल्लाह ने परवाना जारी कर दिया मुझे जहन्नम से निजात का, क्या कब्र में मुनकर नकीर के सारे सवालों से मैं निमट गया, क्या तुमको गैब पता चल गया, तो सब खामोश। तो फिर उन्होंने फरमाया कि बस गलत हो तुम लोग, तुम्हारी तारीफ से तुम्हारी वाहवा करने से मैं अच्छा नहीं हो जाऊंगा, जब तक कि मैं अपना ईमान कब्र में लेके नहीं उतर जाता सही सालिम, उस वक्त तक कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी मुझे शैतान पकड़ के हलाक कर सकता है, तो तुम्हारे कहने से अच्छा नहीं हो जाऊंगा जब तक अल्लाह पाक मुझको माफ नहीं करेंगे। और नजर के वक्त अल्लाह पाक पर्चा आउट कर देते हैं, ऐ मेरे बंदे तुझे हमने माफ कर दी और तेरी मफरत कर दी, जा जन्नत में, फरमाया उस दिन मैं खुशी मनाऊंगा। तो उससे पहले अपने आप को अच्छा समझना ये जायज नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ने तकवे के ऊपर एक बात फरमाई जिसका खुलासा ये कुरान पाक की आयत का अल्लाह कभी विशी माफ फरमाए, कह लोगो अपने मुंह से अपना तकवा मत बोला करो, मैं बहुत मुत्तकी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये नेक अमाल करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो अल्लाह फरमा रहा है अपने मुंह से मत बोला करो तकवे की बातों को, ज्यादा मैं ऐसा मैं वैसा, क्योंकि जब तुम अपनी माओ के जब पेटों में थे ना हम उस वक्त से तुम्हें देख रहे हैं, क्या अल्लाह पाक ने हमारा तकब्बुर हुआ है कि जब तुम माँ के पेट में थे हम ही तुम्हारे खालिक मालिक, हम उस वक्त से तुम्हें जानते हैं और तुम्हें तुम्हारे मालिक हैं, तो तुम क्या हो, तुम दुनिया के आगे छुप सकते हो लेकिन हमसे नहीं छुप सकते, हम तो तुम्हारे मालिक और खालिक हैं, माँ के पेट से हम तुम्हें जानते हैं, तो हमें पता है कि तुम में सही मायनों में मुत्तकी है कौन, तो अपने मुंह मिठू मत बनो, वो हमें पता है कौन मुत्तकी है। तो यहाँ भी अल्लाह पाक नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं, नेक क्यों बनते हो तुम, तो अल्लाह को अपनी खूबियां पसंद नहीं, अपने मुंह से कोई बोले, दुनिया तारीफ करे दुनिया बोले वो एक अलग मामला, वो भी अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। जैसे एक शख्स आया उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला शख्स के बारे में लोग बहुत तारीफ करते हैं, तो उसके बारे में ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या हुक्म है, फरमाया ये उसके जन्नती होने की नकद बशारत है, ये उसके जन्नती होने की नकद बशारत है, तो ये अल्लाह की तरफ से नाम है। अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है और सब 100% तो नहीं हो रहा, 10 में से अगर 6-7 लोग भी तारीफ कर रहे हैं तो मुबारक है, 2-3 अगर बुरा कहना तो उसकी अहमियत नहीं, एवरेज देखा जाता है, क्योंकि बेअब्बा तो अल्लाह की है। तो भाई अगर हमें अल्लाह का प्यारा बनना है तो अपनी नजरों में बुरा बनना पड़ेगा, हमें ना अल्लाह का प्यार मिलेगा, अल्लाह करम करेंगे। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला में एक बार गुजर रहे थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिब्राइल अमीन आए हुए थे, تو ابن جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا ابو ذر غفاری, یہ تو آپ کے صحابی رسول ابو ذر غفاری ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل تم تو آسمانوں میں رہتے ہو, تم میرے صحابی کو کیا جانو, تم کیسے ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے والے کیا پہچانیں گے, ان کی قدر تو آسمان والوں سے پوچھیں, یہ مدینے میں رہتے ہیں لیکن ان کا غلغلہ آسمانوں میں مچا ہوا ہے, شہرت ان کی ایسی اللہ کے دربار میں ہم فرشتوں میں ساتوں آسمانوں میں یہ مشہور ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ان کا ایسا عمل ہے, کیا کرتے ہیں یہ, کیا ان کا عمل ہے؟ فرمایا دو باتوں کی وجہ سے, پہلا کیا تھا, اپنے نفس میں اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں, بہت ہی برا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب سے کم تر برا میں ہوں, سب سے برا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, نفس میں صغیر چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اور دوسری بات کیا ہے, قرآن اللہ شریف کے عاشق ہیں, سورہ اخلاص کثرت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو بھائی اب جو اپنی نظروں میں پیارا ہے وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہے, اور جو اپنی نظروں میں ذلیل ہے برا سمجھتا ہے اللہ کی نظروں میں پیارا ہے, تو اللہ فرما دیتا بتاؤ کس کی نظروں میں پیارا بن, کس کی نظروں میں پیارے بنیں گے تو کام بنے گا. خود اپنی نظروں میں پیارے بننے سے تو ذلت مل رہی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, برا سمجھنے میں جو ہے اللہ کی طرف سے پیار اترتا ہے, عزتیں ملتی ہیں, محبتیں ملتی ہیں, اللہ جذب کر لیتے ہیں. حاضرین کی ساری آدمی کے اندر ہونی چاہیے. اب لوگ ٹی وی ایل سی ڈی 50 سال سے دیکھ رہے ہیں, ناچ گانے دیکھ رہے ہیں, لپٹا چپٹی دیکھ رہے ہیں, گوشو کنار دیکھ رہے ہیں, بہن بیٹیوں کے ساتھ موبائل پہ غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, اور پھر لڑکیوں کا بدنفری کر رہے ہیں, 20-20, 30-30, 40-40 سال ہو گئے, کہتے ہیں ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہو یا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دی ہو. تو بھائی گناہ کس شے کا نام ہے پھر؟ یا کسی کی گردن جب تک ہم قتل نہیں کر دیں گے, کاٹ کے نہیں پھینکیں گے, اس وقت تک کیا گناہ نہیں ہوگا؟ کیا پھر گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آج کتنے ایسے گناہ کبیرہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ رائج ہو چکے ہیں کہ اس سے بچنا تو ایک طرح ان کو گناہ بھی کوئی نہیں گردانتا, نہ کوئی سمجھتا گناہ, کیونکہ وہ اتنے یوز ٹو ہم لوگ ہو چکے ہیں, وہ اس دائرہ گناہ سے نکل چکی ہیں وہ اعمال. توجہ دلاؤ تو کہتے ہیں ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے, اس کا دھیان ہی نہیں تھا. ارے بھائی تو اتنے بڑے بڑے گناہ رکھے ہیں جسم کے اندر ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں, 50-50 سال ہو گئے اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہیں, کیسے سلو ہوگی پھر؟ ایسے سلو ہوگی؟ اللہ کا پیار, اللہ کی تجلیات جذب تو اکثر ان لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں جو اپنی نظروں میں ذلیل ہوتے ہیں, گناہگار سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, اور سوچتے رہتے ہیں کہ پتنی کب میرا بلاوا آ جائے گا, اگر میں مر گیا تو اللہ پاک اس حالت میں تو نے بلایا تو میں کیا کس منہ سے تیرے پاس آؤں گا, میرے تو عمال اس قابل نہیں ہے. پھر اللہ کو پیار آتا ہے, پھر اللہ ان کو تیاری کی توفیق دیتے ہیں. جو پہلے اپنے آپ کو بہت ہی توپ چیز سمجھ رہا ہو بھائی, اس کو کیا پھر اللہ پاک قریب کریں گے, پھر بھی کر لیں ان کی مہربانی. تو ایک تو یہ چیز تو پریشانی ہے, زیادہ تر جو آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. فجر کی نماز ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہی قرآن پاک پابندی سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں, ذکر اللہ پابندی سے کتنے پڑھتے ہیں؟ وہ تو کچھ لوگ تبلیغی جماعت میں چلے گئے, یا کچھ لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیا, بیعت کر لی, تو تھوڑی بہت 2-4 وقت کی فجر کی نماز ہو گئی, قرآن ذکر اذکار کر لیا, کچھ گناہوں سے بچ گئے, ورنہ عوام الناس عام لوگوں کو تو اکثر کا بہت برا حال ہے. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں پتنی کون سا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے پریشانیاں جو ہے ہمارے اوپر آئی جا رہی ہیں؟ ارے بھائی تو نیک اعمال تقویٰ کون سا ہے جو پریشانیاں نہ آئے؟ تو بہرحال اب اس کا حل کیا ہے؟ آج کل ایک اور جو پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, تو گناہوں کی نوعیتیں ہوتی ہیں. تو آج جو اہم بات جو بتانی تھی, آج کل بڑا بکثرت یہ معاملات سننے کو ملتے ہیں پریشانیوں میں سے, ڈبل پریشانی لوگوں کے ساتھ, کہ جتنے میرے پاس فون آتے ہیں زیادہ تر لوگ آتے ہیں 90% جن, شیطین, جادو, بد اثرات اور بد نظر, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے, جادو, شفلی, کالا علم, شیطانی افراد بکثرت آج پائے جاتے ہیں. اب مجھے یاد ہے کہ 25-30 سال پہلے میں نظر دوڑاتا ہوں, کہیں کہیں کبھی کبھار سنتے تھے یہ واقعہ, اب اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر بچاؤ جس کے اندر یہ شیطانی افراد کی, شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں نہ ہو. 90% تقریباً لوگوں کے گھروں میں شیطانی افراد ہوتے ہیں یا بد افراد ہوتے ہیں, شیطانی افراد کے ساتھ لوگوں کے جسموں کے اوپر, اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر, یا تو جادو لوگ کر دیتے ہیں یا پھر کوئی شیطانی افراد ہو جاتے ہیں, پھر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. تو یہ کبھی ہم نے غور کیا کہ شیطانی افراد کیوں پیدا ہوتے ہیں, شیطین ہمارے گھروں میں ہمارے جسموں کے اندر کیسے حلول کر جاتے ہیں, یہ اتنا کنٹرول ان کو کیسے ملا؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واقعہ ہاروت اور ماروت, یہ جادو لے کے اترے تھے اور کہتے تھے لوگوں کو, سکھاتے بھی تھے اور منع کرتے, دیکھو ہم آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے, کافر ہو جاؤ گے مت سیکھو, ہم تو آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے, लेकिन लोग उनसे जादू सीखते थे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते थे मियां बीवी के ताल्लुकात के ऊपर, और फिर तलाक करा दिए करते थे, फिर इस तरह से बाप लोग शादी कर लिए करते थे उन औरतों से। यहां से जादू की इब्तदा हुई थी। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कि उसका खुलासा यह आया था कि फिर अल्लाह के हुक्म से वो जादू फिर असर कर जाता था। तो यहां से उलमा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कानून बना दिया, जादू बराह रास्त नहीं होता, जिसने उसपे कर दिया उस पर, उसने उस पर कर दिया। नौजबिल्ला अल्लाह का तमाशा देख रहे हैं भाई, कायनात का रब अल्लाह है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम कहते हैं ना हकीकत है। तो अल्लाह भी फरमा रहे हैं कि मेरी इज़्न से, मेरे अप्रूवल के बगैर जादू नहीं होता, मेरी इज़्न होता है, हुक्म होता है तो जादू भी होता है। जादू कोई किसी पे करता है, बुजुर्ग फरमाते हैं समझाने को कि भाई चलो मान लिया तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू किया है, बिलफर्ज पहले जो जादूगर था उसने जो जादू किया करवाया किसी से उसने या किया जो भी, तो पहले उसके दिल में बात ये आई क्यों तो तुम पर जादू करे। नंबर दो, फिर वो आमिल के पास किसी जादूगर के पास चल के गया कि इस पे जादू करो, उस पे फिर उसने रकम भी दी, पैसा भी दिया, फिर दूसरा स्टेप पूरा हुआ। फिर तीसरा अमल ये हुआ कि फिर जादूगर ने फिर वो अमल भी किया, अल्लाह ने उसको नहीं रोका, अल्लाह की तरफ से ढील चल रही, तीन स्टेप पूरे हो गए। फिर चौथा अमल ये हुआ, फिर जादूगर ने जब जादू किया फिर उसके बाद उस जादू ने उस पर असर नहीं किया जिससे किया गया, उसने पहले अल्लाह से पूछा जादू ने, अल्लाह पाक इस पर असर कर दूं हो जाऊं, फिर चौथी चीज अल्लाह ने भी हाँ कर दी, ए जादू हो जा, अल्लाह का भी हुक्म हो गया, अब क्या हुआ जादू असर कर गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने स्टेजेस सारे काम होते चले गए तो अल्लाह के हुक्म से ये काम क्यों हुआ, पता चला अल्लाह की नाराजगी और गजब छुपा हुआ है, अल्लाह नाराज है, अल्लाह नाराज है, जिसकी वजह से जब अल्लाह नाराज होते हैं खाली जादू नहीं, फिर बड़ी बड़ी बलाएं आती हैं, फिर रिस्क तंग कर दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह की नाराजगी की वजह से रिस्क तंग कर दिया जाता है। तो जब रिस्क तंग होता है इसी तरह बीमारियां आती हैं, बलाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, जादू भी होगा, शैतान भी आएंगे, सोते में डराएंगी भी चीजें, खतरनाक खौफ भी आएंगे, दिल पे अटैक भी होगा, क्योंकि जालिम अल्लाह को नाराज किया हुआ, मामूली बात है, वो खालिक खैर है तो खालिक शर भी तो है, खालिक शर भी तो है, सारी शर उसने तो बनाई है, वो नाराज है, जादू भी हो गया, शैतानी अफराद भी हो रहा है, सब हो रहा है, अल्लाह पाक देख रहे हैं। तो पता चला अल्लाह के हुक्म से तो हो रहा है क्योंकि अल्लाह नाराज है हमारे अमाल की वजह से। इसी तरह जादू करने वाला भी समझता है कोई शायद ये कोई गुनाह है, जो लोग जादूगरों के पास जाते हैं या खुद आमिल हैं गंदे तो वो काफिर हो जाते हैं, अगर बिलफर्ज ये जो काफिर काम कर रहा है वो तो है ही काफिर, लेकिन अगर कोई साहिब ईमान भी ये काम करेगा या किसी गंदे आमिल के पास गया, चाहे किसी से जादू करवाया उसने या अपना कोई अमल जो उस पर गंदा इल्म हुआ था, अगर उसने उतार भी किसी काले इल्म वाले से करवाया तो उसी वक्त वो भी काफिर हो जाएगा मुसलमान। अपना उतार कराना भी जायज नहीं है किसी काले इल्म वाले से, क्यों अल्लाह से मायूस हो गए, रहमान से मायूस हो गया, कुरान और हदीस से मायूस हो गए कि आज तुम्हें शिफा नजर नहीं आ रही, तुम्हें शिफा जो है काले इल्म में, सिफली इल्म में, जंतर मंतरों में, शैतानों के नामों में तुम्हें जो है वो असर नजर आ रहा है, जो वहां चले गए तुम। और जाहिल लोग कहते हैं जी ये ना काले की जो काट होती है वो काले से ही होगी, काला इल्म हुआ है ना तो कुरान से नहीं होगी, काले की इल्म, काले की काट काले से होगी, नऊज़ु बिल्लाह, यानी कुरान पीछे रह गया। क्या अकीदे मुसलमानों के आजकल चल रहे हैं, तो आजकल ये हमारे यहाँ जादू भी बहुत फैल रहा है, और खास तौर पे मियां बीवी में लड़ाई झगड़े और ये सब करवाने में फुफराल वाले और बहुत से इसमें करीब के अपने अजीज होते हैं, कोई कारोबार कर रहा हो तो उस पर बंदिश लगा देते हैं, कोई मियां बीवी खुश है तो वो बर्दाश्त नहीं होता, तो कोई किसी को आजकल खुश देख नहीं सकता, ये बड़े गंदे मामला चल रहे हैं। तो उन लोगों को डरना चाहिए कि ये गुनाह नहीं है बल्कि दायमी जहन्नम नसीब होगी ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़कर शैतानों से मदद हासिल कर रहे हैं और शैतान खुला दुश्मन है अल्लाह ने फरमाया, तो ईमान रुखसत हो जाता है ऐसे लोगों का। तो ये जो स्टेजेस बताए कि ये अल्लाह का हुक्म कैसे हुआ जादू की नहीं, बिल्कुल अगर हुआ भी तो अल्लाह से अगर हमारा रिश्ता मजबूत है, तकवे से हम रहते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर असर नहीं करता। फिर जादू के मामला क्या होते हैं, जादू किया किसी ने 100%, बहुत तगड़ा अमल कर दिया, उस पर मशायख फरमाते हैं बिल्कुल हुआ भी तो वो भी अल्लाह के हुक्म से होता है। क्या मतलब, अगला 100% का ताकतवर जादू किया लेकिन असर कितना हुआ, किसी पे 10% हुआ, खाली 90% नहीं हुआ, किसी पे असर हुआ 50% हुआ, जितनी पावर का किया था उसको सिर्फ 50% असर हुआ, 50% नहीं हुआ, किसी को 60% हुआ, किसी पे 70% हुआ, किसी पे कुछ असर ही नहीं हुआ, किसी पे असर ही नहीं हुआ। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, कितना परसेंटेज होगा, और पीछे ये छुपा हुआ क्या होता है राज अल्लाह का। अल्लाह का राज छुपा हुआ क्या होता है इस चीज के पीछे, हमारी इस्लाह तरबियत। कितनी खवातीनों के फोन आए, अरे रोज शक्लियां देखती हूँ, काली बिल्लियां रास्ता काट के जा रही हैं, मेरे पीछे कुत्ते लगे हुए, डर गई। मैंने फिर कुरान जिक्र अस्कार पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मान गई। फिर उसके बाद शरई पर्दे का वो भी मान गई। अल्लाह कुत्ते बिल्ली से ख्वाबों में डर गई, जागते हुए अल्लाह से नहीं डरे। हालत बेदारी में लोग अल्लाह से नहीं डरे, गुना दवा दवा कर रहे हैं नहीं डरे। ख्वाब में तो कुत्ते देख लिए, काट रहा है डर गए, कुरान जिक्र अस्कार सब शुरू कर दिया। चलो भाई माशाल्लाह ये भी मुबारक है कि किसी बहाने अल्लाह की तरफ तो आए, लेकिन सोचने वाली बात है ख्वाब में इतना डर रहे। ख्वाब में कोई चुड़ैल नजर आ गई, कोई साया नजर आ गया, थर थर कांप रहे, तकवे पर आ गए, लेकिन जागते में अल्लाह से न डरे। जो खालिक शैतान खैर खैर और खालिक चुड़ैल है और खालिक शर है उससे नहीं डरते लोग। हम लोग काली बिल्ली रास्ता काट जाए वगैरह से वो साया दिख जाए फिर देखे, बार बार पेशाब आने लगता है, मोशन लग जाते हैं। तो भाई अल्लाह का खौफ क्यों नहीं रखते हम लोग, ये चीजें क्या बेचती हैं हमारे आगे, अल्लाह के आगे? तो यही वजह है कि अल्लाह का खौफ दिल में ना रखने की वजह से मखलूकात हमें डराती रहती हैं। जो अल्लाह से डरता है उसे कायनात का वर्रा वर्रा डरता है, तमाम मखलूकात डरती है। मशायख फरमाते हैं, उलमा कराम ने किताबों में लिखा है हवालों के साथ, कि जो अल्लाह से डरता है कायनात की हर मखलूक उससे डरती है, अदब करेगी, मोहब्बत करेगी। जो अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं मुत्तकी होते हैं, और जो अल्लाह से नहीं डरता हर चीज उसको डराती है। तो अल्लाह का खौफ बड़ी मुबारक चीज है। तो ये जो जादू टोने के मामलात जो हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, इससे बचना चाहिए। ईमान रुखसत हो जाता है और तकवे की तरफ आए। इसी तरह लोग कहते हैं जी ये जादू तो बहुत कम होता है, ये भी बता दूं जादू करने वाले कम होते हैं, ज्यादातर लोगों के साथ शैतानी अफराद हो जाते हैं। जादू करना अलग होता है, शैतानी अफराद हो जाना एक अलग चीज है। शैतानी अफराद क्या होते हैं, उसकी क्या वजूहत होती हैं, वो अलग बात है। शैतान भी जादू करते हैं, बस जिस तरह इंसानों में हर इंसान आमिल नहीं होता, इस तरह शैतानों में भी हर शैतान जो होता है वो आमिल नहीं होता। तो बाज होते हैं आमिल शैतान, तो वो भी बाज दफा जादू करते हैं। तो अब उसकी वजूहत कुछ कुरान पाक में और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताई गई है। लोग कहते हैं ना, सवाल करते हैं जी इतनी कसरत से शैतानी अफराद क्यों हो रहे हैं? तो भाई सबसे बड़ी बात तो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह जिन में सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ने फरमाया दो आयतें कि जो लोग हमारी याद से कुरान जिक्र अफकार से एराज करते हैं तो हम उसके ऊपर एक ऐसा शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो हर वक्त उसके साथ रहता है। यानी अलग से कोई गुनाह करने की जरूरत नहीं है, आदमी सिर्फ कुरान पाक अल्लाह का जिक्र अल्लाह के साथ मामला छोड़ दे, उसको याद करना छोड़ दे, अल्लाह कह रहे मैं शैतान को उसके ऊपर मुसल्लत कर दूंगा, शैतानों को उसका साथी बना दूंगा जो हर वक्त उसके साथ रहेंगे। ना शैतानी अफराद क्यों हो रहे हैं, तो पहली वजह तो ये आ गई, और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि हम उस पर अपना अजाब नाफिल कर देंगे जो हमारी याद जिक्र अफकार से एराज करता है। फिर आदमी अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे, अलग से कोई गुनाह ना भी करे। या आयतें पढ़िए सूरह ज़ुख़रुफ़ की और सूरह जिन की, जवाब मिल जाएंगे। और फिर अल्लाह ने तीसरी जगह इरशाद फरमाया कुरान में, कहते हैं जो लोग हमारी याद से एराज करते हैं तो हम उसके जिंदगी को मईशतन जन का तल्ख और कड़वी कर देंगे। यानी उसके जितने भी शोबे हैं माशरत है वो सब तबाह बर्बाद उसकी कर देंगे। इस जालिम के पास हमारे पास टाइम नहीं है, माँ के पेट से हम फैश करा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ये हमारी तरफ आता ही नहीं है। हल्की फुल्की टचिंग के साथ रहता है, वो जुमे जुमे को आता है मस्जिद में, न गुनाहों से बचता है। इसकी जिंदगी में ही नहीं कोई प्लान, फ्यूचर प्लान। मरने से पहले मरने की तैयारी क्या होती है, खबर की तैयारी क्या होती है ना? मरने की तैयारी होती है ना। आदमी को उम्रे पे जाता है तो उम्रा करने से पहले उम्रे की तैयारी है ना। कहीं दुबई भी जा रहा है तो दुबई पे जाने से पहले दुबई की तैयारी है ना। सुबह ऑफिस भी जा रहा है तो सुबह ऑफिस जाने से पहले की तैयारी है ना। लेकिन मौत की तैयारी भी होती है, वो करनी है। वो क्या मामले है, वो क्या सवाल आते हैं जो अल्लाह पूछेगा अगर मैं इसी वक्त मर जाता हूँ तो? वो क्या ऐसी चीजें हुकूल अल्लाह हुकूल इबाद की जो पूरी मेंटेन करके रखना जरूरी है, अक्सरियत को नहीं पता। तो फिर गफलत से जगाने के लिए, होश में लाने के लिए अल्लाह पाक फिर मजबूरन ना चाहते हुए, क्योंकि हम प्यार से आ नहीं रहे होते, फिर अल्लाह पाक परेशानियां भेजते हैं। फिर बीमारी भी आएगी, फिर शैतान भी तंग करेंगे, फिर जादू भी होगा, फिर बदअफराद भी होंगे, फिर नगर गुजर भी होगी, फिर एक्सीडेंट भी होगा, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। देखिए हमारा ढीठ पल खत्म ही नहीं हो रहा, बात समझ में ही नहीं आ रही, इसी चक्कर में रहते हैं कि आमिल मिल जाए, तारीफ घोल के पी जाऊं और गड़प करके मैं दो घूट पानी पीऊं, सब मेरा जिन भूत सब खत्म हो जाए शैतान। तो भाई ऐसा होता नहीं है। हजरत वाला हमारे मुर्शिद عارف بالله حضرت اقدر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نے ارشاد فرماتے تھے, کسی اللہ نے اگر کسی کو اصلاح کی وجہ سے اس کی اصلاح اور تربیت کرنے کو پریشانی بھیجی ہو اور کوئی ایسا مجھے عامل لا کے دکھاؤ کہ اس کو بھیجی ہوئی اللہ کی پریشانی کو اپنی تعویذ گنڈوں سے اس کو بھگا کے دکھا دے ان پریشانیوں کو بلاؤں کو, تو میں اس کا منہ چوموں گا. یعنی چھوڑتا وہ ہے, چھڑاتا وہ ہے جو پکڑنے والے سے زیادہ مضبوط ہو. چھڑاتا کون ہے؟ جو پکڑنے والے سے زیادہ مضبوط ہو. اللہ نے پکڑا ہے تو اللہ ہی چھوڑے گا. اللہ نے پکڑ کی ہے اگر اصلاح کے لیے تو اللہ ہی چھوڑے تو چھوڑے. اللہ والے کے پاس جا کے کیوں مسائل ہو جاتے ہیں زیادہ تر؟ وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے عاملوں سے وہ کام نہیں ہوتے, اللہ والوں سے ہو جاتے ہیں بغیر تعویذ گنڈوں کے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ والے اللہ کے مزاج شناس ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کو فراست ایک نظر دیتے ہیں. بندہ مومن کی فراست سے ڈرو, آپ حسن نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی فراست سے ڈرو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ نہیں دیکھتا, اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے. وہ دیکھ رہتا ہے آنے والے بلاؤں میں مصیبتوں سے پریشان ہے. صبح سے رات کا خدا کو انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے. پھر وہ پیار پیار سے لے کے چلتے ہیں, وہ ایسے ان کے اعمال پہ لگاتے ہیں جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. اللہ کا جب غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, اللہ ان سے خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتے ہیں تو بلائیں اللہ دور کر دیتے ہیں. پھر لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, ان کی کرامت ہے کہ میرے مسائل حل ہو گئے. نہیں, کرامت وغیرہ ہے نہیں ہے, سب بات نہیں. پہلے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مزاج شناس ہوتے ہیں. وہ ٹپس ان کو پتا ہوتی ہے کہاں کہاں سے کیا کیا اس سے عمال کراؤں, کیا عمال چھوڑواؤں, اللہ کا پیار اس کو نصیب ہوگا, اس کی بلائیں دور ہوں گی. اور پھر ہو جاتا ہے ایسا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت ظاہر ہو گئی. ہوتی ہے کرامت, انکار نہیں ہے, لیکن بعد میں اگر کوئی سچا شیخ نہ ہو اور وہ تقوی کی تعلیم نہ دے, صحیح عمال پہ نہ لگائے, میں دیکھتا ہوں کون سی کرامت ظاہر ہوتی ہے. پہلے اللہ ہے, ساری چیزیں بعد میں. اس لیے حضرت کا بہت پیارا شعر تھا کہ وہ کار فرما ان کا فضل ہوتا ہے, یعنی اللہ اللہ کا فضل. کار فرما ان کا فضل ہوتا ہے, نام ہم فقیروں کا ہوتا ہے. نام ہم فقیروں کا ہوتا ہے کہ سب اللہ پاک کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو اللہ کے رستے پہ لگاتے ہیں, ہم ان اعمال پہ لگا دیتے ہیں کہ تقوی کی طرف. اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جَلَّهُ مَخْرَجًا, جو شخص تقوی اختیار کرے گا مصیبت سے نکال دیں گے, اخراج کر دیں گے. بس تقوی کی راہ دکھائی, اس نے عمل کرنا شروع کیا, بندے نے اللہ کی رحمت آ گئی, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. یہ نا بھائی, تو یہ شیطانی افراد جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ تو پہلے بتایا کہ اللہ کی یاد ذکر اذکار کرنے سے, اور اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی معیشت زن کا تلخ کر دی جائے گی, کڑوی کر دی جائے گی, معاشرت خراب اس کی ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ نے احادیث مبارک میں بڑا تفصیل کے ساتھ آیا کہ جب جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, خلاف حدیث پاک کا, تو شیطان ان کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اب شیطان سے زیادہ ملون پلید گندی نجس چیز دنیا میں کائنات میں نہیں ہے. اس سے زیادہ وہ پلید شہ ہے, گندی نجس ناپاک. جب اس کا پیشاب جب نظر نہیں آتا, ہمارے یورین کی طرح وہ لیکوڈ فارم میں نہیں ہوتا, لیکن اس کی نجاست کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ کان میں اس کی گند جائے گی پیشاب کی, شیطان کی, جو شخص نماز چھوڑ رہا ہے فجر کی, تو کان کے ذریعے دل دماغ کے اوپر جائے گی وہ گند. تو پھر دل دماغ کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر غصہ نہیں بڑھے گا, جنون نہیں بڑھے گا, مایوسی نا امیدی نہیں بڑھے گی, وحشت نہیں بڑھے گی, گھبراہٹ بے چینی نہیں بڑھے گی. حضرت والا اسی چیز کو فرماتے تھے, منہ میں کباب ہوگا دل میں عذاب ہوگا. کیا حالت ہوگی؟ منہ میں کباب ہوگا, یعنی کیا مطلب؟ دنیا کے عیش ہوں گے, دولت کے انبار ہوں گے, پیسہ دولت سارے مالی اسباب ہوں گے, لیکن دل میں عذاب ہوگا. ایک آگ لگی ہوئی ہوگی دل میں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ ظالم آدمی فجر نماز نہیں پڑھتا, فجر کی رز تنگ کر دیا جاتا ہے, شیطان مسلط ہو جاتے ہیں فجر کی نماز چھوڑنے. فجر کی نماز با جماعت ریڑھ کی ہڈی ہے. اور آگے چلیے, لوگ کہتے ہیں شیطانی افراد کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی, بتاؤ کتنے فیصد لوگ ہوں گے ان پر افراد نظر آئیں گے. اور آگے چلیں, جب ہم سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے, یا اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پلیٹ کو انگلیوں سے صاف کرتا ہے, بالکل صاف کر دیتا ہے انگلی سے کھانا کھانے کے بعد, تو پلیٹ دعا دیتی ہے تو اس بندے کو, یا اللہ اس شخص نے جس طرح مجھے شیطان کے ہاتھ پڑنے سے بچایا, تو اسے جہنم کی آگ سے بچا. اب بتائیے, آپ لوگ کہتے ہیں نا شیطانی افراد کیوں ہو رہے ہیں؟ آج کل فیشن ہے, اسٹائل ہے, چاہے وہ اپنا گھر ہو یا مہمان کہیں بن کے ہم جائیں, شادی دعوتیں کہیں ہم جا کے اڑاتے ہیں, تو کہ اسٹائل ہے, بھر کے بھر لیتے ہیں اور اس کو گھر گھر آ کے چھوڑ دیا, پھر دوسری صاف پلیٹ آئی وہ بھی نکالی. ارے غالب اتنا نکالا کیوں تھا؟ گھر میں بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے, کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں پلیٹ سے کون صاف کر رہا ہے آج کل؟ شرم آتی ہے آج مسلمانوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, کہ لوگ کیا کہیں گے. تو فیشن میں کیا چھوڑ دیا سالن, اب سالن ہم نے تھوڑا بچا ہوا, اب جب وہ سنک میں جائے گا जब रखते हैं किचन में जाती है जब प्लेट है तो फिर शैतान उनको खाते हैं, सालन को बचे को। अब शैतान जब हाथ डालेगा प्लेट के ऊपर तो ये जो बेजान चीजें से दीवार हो गई, लकड़ी हो गई, प्लेट हो गई, कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि ये हवास रखती है, सेंसेस होते हैं इनके अंदर। तो शैतान हमारे सीने पे हाथ रख दे तो हमारी हालत क्या होगी, तकलीफ से, दर्द से। तो जब प्लेट पे वो हाथ मारेगा खाने के लिए तो प्लेट को तकलीफ होगी, आपने हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, साफ कर ली उंगली से, अब प्लेट खुश हो गई, शैतान आया देख के चला गया यार उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो प्लेट बच गई शैतान का हाथ पड़ने से, उस तकलीफ से आपने बचा दिया प्लेट को, अब वो खुश होकर प्लेट दुआ दे रही है, अल्लाह इसने मुझको जिस तरह शैतान के हाथ पड़ने से बचाया तो उसे जहन्नम की आग से बचा। जहन्नम की आग मामूली है, दुनिया की आग 70 गुना हल्की है। कहना शैतानी अफराद क्यों होते हैं, सालन जाया करने से, बचाने से। और आगे चले, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो लोग खड़े होकर खाना पानी इस्तेमाल करते हैं, खड़े होकर खाते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, शैतान उनके साथ खाता पीता है। शैतानी अफराद के वो बता रहा हूं कहां शैतान घुसता है हमारे अंदर, खड़े होकर पानी पी रहे हैं, शैतान झूठा हमारे साथ पिएगा और साथ आ गया हमारे ऊपर शैतानी अफराद। खाना भी खड़े होकर लोग खाते हैं, कितने फीसद लोग हैं जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ के खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तीसरी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया तो खड़े होके खाना पानी के ऊपर है, और जो लोग बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाते हैं तो शैतान फिर उनके खाने पीने में शामिल हो जाता है, फिर वो शैतान का झूठा खाते हैं। तो जब शैतान का झूठा हमारे पेट में जाएगा तो हमारा दिल अल्लाह की तरफ लगेगा, अल्लाह वालों की तरफ लगेगा, शैतानियत की तरफ दिल दिमाग जाएगा, फिर जिना बदकारी हराम कारियां मोबाइल अच्छा लगेगा फिर हमें, क्योंकि शैतानियत हमारे अंदर आ गई है। जिसकी जो जिन्स होती है उसको अपनी तरफ खींचती है। शैतानी अफराद होंगे तो शैतानी अमाल की तरफ लगेंगे हम, रहमान की अगर अफराद हमारे पर ज्यादा होंगे तो रहमानियत की तरफ आएंगे। तो ये गिनते जाइएगा, उसको जहन में गिनते जाइए हाथ से कितने ऐसे अवामिल हैं जो शैतानी अफराद होते हैं। इसी तरह जब हम बैतुल खला जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाइए बैतुल खला जाने की, बिस्मिल्लाह, देखिए बाहर पढ़नी, अंदर जाके नहीं, वॉशरूम में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल खुबूति वल खबाइस, कि अल्लाह पाक मैं पना चाहता हूँ शैतानी चीजों से, खबीस जो मुजक्कर और मुअन्नस जो भी हैं वॉशरूम के अंदर, अल्लाह इनसे मेरी हिफाजत फरमा। तो ये लोग जो बगैर दुआ के और सुन्नत के खिलाफ जाते हैं, जैसे बाथरूम में जाना चाहिए तो टोपी सर ढाक के जाना चाहिए, उल्टा पैर रख के जाना चाहिए, दुआ पढ़ के जाना चाहिए। तो मुहद्दिसीन और उलमा कराम फरमाते हैं फिर जो बाथरूम के अंदर जो शैतान होते हैं उनके और हमारे दरमियान और हमारी शर्मगाह के आगे अल्लाह पाक एक आग लगा देते हैं, उनको फिर हम नजर नहीं आते और फिर हम लोग फारिग होके आ जाते हैं। लेकिन अगर सुन्नत के खिलाफ गए तो फिर वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, फिर शैतानी अफराद कारी हो जाते हैं। अक्सर जो हमारे घर की खवातीन जो हाल है हमारा, वो हमारे सामने ही है, वॉशरूम जाती है और दुपट्टा अगर बिल्कुल तो लेती नहीं है खवातीन, ना होने के बराबर है, बिल्कुल देती भी है तो क्या करती है, उतारा फेंका साइड में और सीधी वॉशरूम में, सीना भी खुला हुआ है, बाल भी खुले हुए, अब बाथरूम चली गई। तो जिस तरह इंसानों में होते हैं अच्छे बुरे शरीफ बदमाश मुत्तकी, इस तरह शैतान में भी होते हैं ये गंदे पलीद जो शैतान होते हैं, ये औरतों के आशिक होते हैं, फिर औरतों पर बात करिए शैतानी असरात ज्यादा हो जाते हैं, फिर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और खवातीन को जो ज्यादातर ये रहम की जो बीमारियां होती है यूटेरस की, ये सब शैतानी अफराद वगैरह की वजह से होती है ज्यादातर। तो ये शैतानी अफराद जो कहते हैं ना क्यों हो रहा है इतने, इसी तरह मौसीकी गाना बजाना, नबी पाक आकद हो जहां हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मैदान में तशरीफ लेके जा रहे थे, सहाबा के 313 सहाबा थे, उनके वाकयात में से जब ऊंट और कुछ ऊंट वगैरह थे, कुछ घोड़े भी थे, तो उनमें कुछ पाजेब टाइप के घुंघरू लगे हुए थे, बड़ा गौर कीजिएगा इन बातों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि ये इन घोड़े और ऊंट वगैरह जो भी है ये जानवर, इनके जो घुंघरू वगैरह जो बने हैं इनको काट के फेंको, क्योंकि जहां घुंघरू होगा वहां शैतान आ जाते हैं और अल्लाह की मदद हट जाएगी, यानी फिर हमें पता नहीं मिलेगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, उसके बावजूद कह रहे हैं अल्लाह की मदद नहीं आएगी, पता मुश्किल हो जाएगी, यानी गुनाह नाफरमानी ऐसी चीज है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी आप सल्लम तकवे का हुक्म दे रहा है सहाबा को कि इन घंटियों को उतार के फेंको, क्योंकि जहां एक घंटी होगी वहां एक शैतान आ जाता है, हर घंटी के साथ एक शैतान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं शैतानी अफराद, जब एक घंटी के ऊपर शैतान है तो जो घर में एलसीडी चल रहा है 50 इंच का, उसमें तो 50 किस्म के म्यूजिक चल रहा है, ड्रमिंग चल रहा है, गिटार है, और पता नहीं कितने उसमें बेंजो, हजारों किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जब पूरा जो एक, एक जंक्शन बन जाएगा म्यूजिक का, तो फिर वहां कितने शैतीन आएंगे भाई उस जगह के ऊपर। एक घंटी में जब शैतीन आ रहे हैं तो उसके बाद जो है फिर साहबा कराम ने फिर वो पाजेब काट के, घोरू वगैरह काट के फेंके, तो शैतीन आ जाते हैं म्यूजिक के ऊपर, घंटियों के ऊपर। कह रहे ना क्यों है शैतानी अफराद, हम वो सिग्नल कोड इस्तेमाल करते हैं जिससे शैतीन आए हमारे घरों में, हमारे जिस्मों के अंदर। अल्लाह नहीं मुसल्लत कर रहा है शैतीन को, अल्लाह मुसीबतों में मुबतला नहीं कर रहा है। हमारा हमारा अंदाज फिक्र, हमारा सोचने का, हमारा लाइफ स्टाइल बदल चुका है। आज हम लोग सुन्नत शरीयत से हटल हो चुके हैं, नफरत करते हैं दीनी तकवे से रहने के ऊपर, थोड़ा सा जुज़वी दीनदारी के ऊपर हम चल रहे हैं, उसी को अपनी निजात का जरिया समझ रहे हैं। कैसे मसाइल हल होंगे, कैसे शैतानी शैतानी अफराद दूर होंगे। ये तो चंद चीजें जो बताई जा रही है, इस तरह बहुत चीजें कहां तक बयान करें। तो ये मौसीकी गाना बजाना जो है, इसकी वजह से शैतान दूर कहीं भी अगर होंगे तो जहां म्यूजिक चल रहा होता है तो वहां पर आ जाते हैं और आके नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। और जहां खाना जाया होके जाता है, जहां पे मुफ्ता मिल रहा हो तो लोग पहुंचते ना, यार मुफ्ता मिलता है, चलो भाई दावत उड़ा के हैं, तो शैतान भी उन घरों को पकड़ लेते हैं जहां खाना जाया होके पिक पिक के जाता है। कह रहे ना क्यों हो रहा है शैतानी अफराद। और सुनिए आगे, उलमा कराम ने किताबों में लिखा है, जब कोई घर के अफराद जब घर में दाखिल होते हैं और खिलाफ सुन्नत घरों के अंदर दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, सीधा पैर घर के अंदर नहीं रखते, बस मुंह उठा के ऐसे ही आ गए, तो कुछ शैतान होते हैं जो बाहर की, बाहर उनकी ड्यूटी होती है, तो ऐसे लोगों की ताक में होते हैं जो खिलाफ सुन्नत घर में जाएं तो हम उनके साथ दाखिल हो, तो फिर वो शैतान उनके साथ घर के अंदर दाखिल होते हैं और फिर उनका मकसद ये होता है घर में लड़ाई झगड़े कराना। इतने लोग बताते हैं कि बाहर बड़े बाखला के घर में दाखिल हुए, बीवी बच्चों से माँ बाप से फटा, लड़ाई झगड़ा शुरू। कितने लोगों ने मुझे खुद बताया, बहुत बाखला को मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन घर में घुसने के साथ ही तेज चढ़ता है मुझे, बीवी बच्चों पे निकालता हूँ। बस सुन्नत के उनके अमाल पे लगाया, दुआ पढ़ के मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे पैर रख के आए, दुआ पढ़ के अल्लाहुम्मनी करके जो दुआएं सारी है मैंने को पढ़े हो, उसके बाद वो पढ़ा उन्होंने माशाल्लाह। एक हफ्ते में बताया और लड़ाई झगड़ा एक हफ्ता हो गया, वरना रोज होता था, 10 दिन हो गए, एक बार भी तू की आवाज नहीं निकली। तो सिर्फ सुन्नत शरीयत पर, अभी तो ताबीज गंडों की आमिल का तो बात ही नहीं है, अगर हम सुन्नत शरीयत पे चले तो किसी आमिल के पास जाने की 90% जरूरत नहीं हो, बहुत कम इक्का दुक्का परसेंटेज 1-2% होगा कि फिर भी अगर कोई जरूरत पड़े, वो खास मामला है सुन्नत। ये जो आमिलों को जो चांदी हो रही है, इसी वजह से तो हो रही है कि हमने सुन्नत शरीयत को छोड़ दिया शॉर्टकट के चक्कर में। ना फजर में उठूं, ना बदरवी छोड़ूं, ना मोबाइल छोड़ूं, ना गंदी चीजें छोड़ूं, है ना हराम कारियां छोड़ूं, मैं मनचाही जिंदगी गुजारूं, अगर कोई परेशानी आ जाए तो कोई आमिल साहब मिल जाए, उनको थोड़े बहुत पैसे दे के ताबीज गंडे करके अपनी भला में हटा लूं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तआला शानहु। इसी तरह हमारे प्यारे आकद हुजा ने इरशाद फरमाया हदीस पाक का खुलासा, ये मौसीकी गाना बजाना शैतान का कुरान है। और आगे चलिए, मौसीकी गाना बजाना शैतान का कुरान है। जिस तरह हम जिस अकीदत मोहब्बत से कुरान पढ़ते हैं ना, इस तरह शैतान जो है मौसीकी गाने बजाने का आशिक है, उसका कुरान है। तो हम मौसीकी गाने बजाने की तरह माहिर हैं, तो शैतान का कुरान पढ़ रहे हैं हम, तो फिर शैतान आ जाएगा, वो मेरे मुकद्दस किताब की तलावत हो रही, आ जाऊंगा। हमारा गौर करते हैं शैतानी अफराद क्यों हो रहा है, ये ना कोई हमारे घर बचे हुए, ना हमारी जाने बची हुई, ना हमारे कारोबार की जगहें बची हुई है, कारोबार ही हुई है, कोई अलग किसी को अल्लाह को पैसा दे रहा है, कोई किसी ने कुछ अपना रेस्टोरेंट खोला है या कोई भी दुकान खोली है, तो पहले बड़े बड़े 1000 वाट के स्पीकर ला के, गुब्बारे ला के, मिक्की माउस को शक्लें बना के, फिर उसके बाद धूम धड़ाक करके फुल म्यूजिक चलाएगा, चल रहे खुदा की नाफरमानी, आओ शैतीनों आओ मेरे ऊपर हमला करो। ये मुसलमानों का हाल है आजकल। कितने लोग हैं जो इस्लाम का नाम लेते हैं, कितनी ऐसे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें और जमातें बनी हैं इस्लाम के नाम के ऊपर, और चौराहों पे राउंड अबाउट पे बड़े बड़े 1000 स्पीकर 1000 वाट के स्पीकर ला के फुल स्पीड में गाने चल रहे होते हैं। 14 अगस्त आए, 23 मार्च आए, या कोई भी मामलात होते हैं, तो फिर आप देखिए फलस्तीन के गम में, कश्मीर के गम में गाने चल रहे हैं फुल म्यूजिक के साथ। म्यूजिक तो शैतानों को बुलाया जा रहा है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के लोगों को, बाज लोगों को जो गाने बजाने की वजह से सूअर और बंदर बना दिया जाएगा, सुअर और बंदर बनाया जाएगा मुसलमानों को। आप सल्फा फरमा रहे हैं मेरे उम्मत ही होंगे, वजह क्या बता रहे हैं, दो गुनाहों की वजह से, मौसीकी गाना बजाना और शराब पहले आया, موسیقی گانا بجانا، دوسرے نمبر پر فرمایا شراب نوشی کی وجہ سے سور بندر بنایا جا رہا ہے، اسلام کا نام لے کے آج جو ہے یہ ملی نغموں کے نام پہ میوزک بج رہی ہے، نام اسلام کا چل رہا ہے، بھائی کون سا اسلام چل رہا ہے؟ پھر اللہ کی مدد آئے گی ایسے؟ اللہ کی مدد آئے گی؟ واہ بھائی واہ، ہم لوگوں کا تو سوچ ہی الٹی ہو چکی ہے مسلمانوں کی، صحیح چیزیں غلط نظر آتی ہیں، غلط چیزیں شاندار نظر آتی ہیں، سچے اللہ والے بیوقوف قدامت پسند شدت پسند نظر آتے ہیں، دو نمبر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑھیا اور اعلیٰ نظر آتے ہیں، بس جو دجال سے ڈرا ڈرا کے یورین پاس کراتا رہے، مسانہ خراب کر دے، دہشت ڈراتا رہے، دجال دجال دجال، نفسیاتی ہو رہا ہے سب دجال کے چکر میں، ارے دجال سے بچنے کے لیے اتنا تم بات کر رہے ہو دجال کے اوپر، تو دجال سے بچاؤ کو تو طریقہ بتاؤ، یہ کوئی نہیں بتاتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اللہ والے بتاتے ہیں، ڈرنے ہی کیا کرتا ہے، دجال کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو متقی ہوں گے، یہ تو بتاؤ کہ حرام کام چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، دجال کے دجال کا باپ بھی آ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن کس کے نہیں ہوگا، یہ جو متقی ہوں گے، حل بتاؤ نا، ڈراتے کیوں اتنا، ڈراؤ پھر اس کے بعد تقوی کی بھی تو راہ دکھاؤ، تقوی کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، یہ موبائل ہم جو 24 گھنٹے صبح سے لے کے رات تک لگے رہتے ہیں، بد نظری کرنا، اس سے شیطانی شیطانی افراد ہوتے ہیں، اس میں موسیقی سننا، سور بندر بندر بنایا جائے گا، کوئی بچ رہا ہے موبائل سے، موسیقی کوئی چھوڑ رہا ہے، کیسے مسائل حل ہوں گے ہمارے، کیسے اللہ کا غضب دور ہوگا، گناہ چھوڑنے میں ہم لوگ تیاری نہیں، یہ کوئی پڑھائی بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا کر دیں، کوئی چلہ بتا دیں، ارے بھائی یہ کون چھوڑے گا حرام کام، جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ کسی مولوی صاحب کی باتیں نہیں، یہ اللہ رسول کی باتیں، تو کامل شفا پانے کے لیے دنیا اور آخرت میں چین سے جینے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور تقوی کسے کہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا نام تقوی کہلاتا ہے، اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، تو بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی، تو کتنی چیزیں بتائی ہیں آج، یہ تو چند چیزیں اگر اسی پہ ہم لوگ عمل کر لیں تو انشاءاللہ سارے شیطینی وغیرہ افراد دور ہو جائیں، میں اپنا زندگی کا پورا مشاہدہ تجربہ بتا رہا ہوں، غور کرنے والی بات ہے، بہت ہی کم 1% بھی شاید ایسے لوگ نہیں ہوں گے، میں بہت بڑے متقی اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا، کہ کوئی شخص 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہو، روز قرآن پاک پڑھتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور تینوں ٹائم یہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، تینوں قل کا اور دعائے انس کا وہ دم کرتا ہو اپنے اوپر، اس کے باوجود کوئی اس کو بدا اس کو ڈرا رہی ہو، ایک واقعہ میری زندگی میں ایسے نہیں ہو رہا، میں اور بہت زیادہ نیک اعمال کی بات نہیں کر رہا، بہت زیادہ تقوی کی بات نہیں کر رہا، بھلے کوئی دوسرے آدمی گناہ کر بھی رہا ہے، لیکن 5 وقت کی خاص طور پر جو فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت، اور قرآن پاک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ اپنے اوپر حصار میں رہتا ہے، حفاظت کے حصار میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو بہت سی بلاؤں سے اللہ پاک بچا کے رکھتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے پریشان آتے ہیں، جتنے شہر زدہ شیطانی افراد مبتلا ہوتے ہیں، نہ ان کا قرآن پاک پراپر ہوتا ہے، نہ ان کا ذکر اللہ پورا ہوتا ہے، نہ ان کی بات جماعت نمازیں ان کی پراپر ہوتی ہیں، اور دوسرے گناہ وہ تو چھوڑے پھر، وہ تو الگ ہی ان کی لسٹ ہے، تو صرف 2-3 اعمال پہ بتا رہا ہوں، یہ قرآن پاک، اللہ کا ذکر، اور 5 وقت کی نماز اور دم کر لیں، بس اسی پہ اللہ پاک بہت کرم فرما دے گا، یہ تو کریں کم از کم جو چیزیں میں بتاتا ہوں، پھر اللہ پاک انشاءاللہ آگے جیسی توفیق دے، پھر اور گناہوں سے بھی اللہ توفیق دیں گے گناہوں سے بچنے کی، تو انشاءاللہ دوسری چیزوں سے بھی پھر انسان بچنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح بیوی سے صحبت کرتے وقت کی بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جب مرد کا جب انزال ہوتا ہے صحبت کے دوران، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، وہ دعا کیا ہے، اللہ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ پاک کہ میرے نطفے سے جو اولاد پیدا ہو اس میں میرا ہی حصہ اور شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، پتہ چلا یہاں بھی شیطان آ رہا ہے کم وقت، شیطان کہیں چھوڑ رہا ہے ہمیں، کہیں نہیں چھوڑتا ہمیں، ساتھ چپکا ہوا ہے ہمارے، صرف بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ اور رسول کی یاد، آپ وسلم کی بتائی ہوئی مفنون دعائیں، تو پھر شیطان میاں بیوی کی صحبت کے دوران پھر وہ نہیں آتا، آج لوگ کہتے ہیں یار یہ بچے بڑے خطرناک پیدا ہو رہے ہیں، آج کل زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے، عذاب کی ہوئی ہے، پہلے کے بچے ایسے نہیں تھے، تو بھائی یہی وجہ ہے، پہلے کے لوگ کچھ ذرا سا اہتمام رکھتے تھے دم دعا درود کا، تو بچے بھی رحمانی صفات لے کر پیدا ہوتے تھے، آج ماں تو خود 9 مہینے پیٹ میں اور سارا دن وہ میوزک موسیقی گانا بجانا موبائل غلط چیزیں دیکھتی رہتی ہیں، اماں تو بھائی اس کا جو ان پٹ جو ہوگا جو ان پٹ ہوتا ہے وہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے، 9 مہینے کا جب بچہ پیدا ہوگا تو کیا وہ بہت بڑا کتب پیدا ہوگا، ظاہری بات ہے ماں کے جو اعمال ہوں گے اس کے اثرات بچے پہ پڑیں گے، ہے نا، حضرت سیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، میں پیدائشی حافظ قرآن تھا، پیدائشی وجہ کیا تھی، کہیں گے میری ماں جو تھی اس نے کبھی यानी वो दौरान हमल मेरी माँ कुराने पाक की सारा सारा दिन वो तलावत किया करती रहती, तो मैं सुनता रहता था। तो 9 महीने तक सुन सुन के मैं पैदा हुआ, तो कुराने पाक का हाफिज था। जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। जब ऐसी माँ होगी, फिर ऐसे बाप होंगे, फिर औलादे भी तो कहलाएंगी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे थोड़ी शख्सियतें बनती हैं, माँ बाप का एक अमल होता है। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तआला शान। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफर में घंटियां और कुत्ता मत साथ रखा करो, क्योंकि जहां सफर में कुत्ता और घंटियां होती हैं तो शैतान उसके साथ हो जाता है, सफर में पीछे लग जाएगा तुम्हारे शैतान। तो कुत्ते को और घंटियों को साथ मत रखो सफर के दौरान, कोई एहतमाम कर रहे। इसी तरह और शैतानी अफराद की क्या वजह, बच्चों को नजर बहुत लगती है, बाप बच्चों में शैतानी अफराद हो जाते हैं। ये माएं जो होती हैं बस 24 घंटे बच्चों को पैंपर में रखती हैं, बस एक ही दफा हो सुबह से लेकर रात तक, ये बार बार कौन उसको अगायम होता है। तो इस चक्कर में बेचारा बच्चा सड़ता रहता है सारा दिन, वो बहाना करता रहेगा, वो गंद बदबू से सड़ता रहेगा। भाई भाई वो शैतीन उस बच्चे पे शैतानी अफराद हो जाते हैं, क्योंकि शैतीन की गिजा होती है पखाना। फिर बच्चे के ऊपर शैतानी अफराद हो जाएंगे। कभी आपको कहीं किसी के घर जाना है, कोई मजबूरी है, कोई शादी भी है, तो चलो फोन में आता है, आपने 1-2 घंटे के लिए पैंपर यूज कर लिया, लेकिन ये 24 घंटे के लिए पैंपर सही नहीं है कि कहता है कि एक ही दफा रास्ते में धुलाऊंगी। बच्चों के रैशेज अलग पड़ जाते हैं, जख्मी हो जाती है बच्चों की नाजुक जिल्द। और इसी तरह बाबा फूड बच्चों को लोग दिलाते हैं, तो आज ये भी एक साजिश चल रही है कि मार्केट में आप ढूंढने निकलेंगे तो शायद ही कोई जितने अच्छे खूबसूरत महंगे आपको मिलेंगे बच्चों के बाबा फूड, उन सब पे शक्लें बनी हुई होंगी सीने के ऊपर। ऐसे कपड़े लेना जायज ना, बच्चों की नहीं जायज है ना बड़ों की नहीं जायज है, शक्लों वाली तस्वीरों वाले लेके शक्लें, तो हराम चीज है, गुनाह अलग होगा। और उन बच्चों पे जो तस्वीरें वाले लोग माँ बाप ने बच्चों को शक्लें फोटो वाले जो उनको कपड़े पहनाते हैं, उन बच्चों पे शैतानी अफराद अलग होते हैं तस्वीर की वजह से। कहां तक बयान करें, कोई एक वजह थोड़ी है शैतानी अफराद की। अब घरों में कुराने पाक पढ़ते रहे, जिक्रुल्लाह करते रहे, लेकिन LCD चलाते रहते हैं, चलाते रहे, आप क्या फायदा होगा फिर। एक तरफ कुराने पाक और अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, फरिश्तों को बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ म्यूजिक गाना बजाना टीवी चला के कुरान जिक्र अफकार का टीवी चला दिया, आप शैतान आएंगे। भाई क्या कर रहे हो, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कुश्ती करा रहे हो शैतानों की और फरिश्तों की, क्या कुश्ती देखने का बहुत शौक है। एक बुजुर्ग यूं, एक साहब आए बुजुर्ग ने यूं कहा कि भाई मुझे लगता है आपको रेसलिंग का कुश्ती का बहुत शौक है देखने का। तो हैरान हुआ ना, तो नहीं रहा ऐसा तो शौक नहीं, वो कभी कभार पहले देखता था और कभी देख ली सालों में देखने का, नहीं नहीं मुझे यकीन है आपको कुश्ती का शौक है। मैं कहा नहीं हजरत, मैंने कहा नहीं मैं कह रहा हूँ आपको कुश्ती देखने का शौक है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कह रहे भाई एक तरफ तो कुरान पाक और अल्लाह का जिक्र करके फरिश्तों को बुलाते हो, वो आ गए, फिर थोड़ी देर बाद जो सब फारे हुए मामूलात करके चलो भाई मोबाइल देख के बदनवरी गलत चीजें देखनी या टीवी देखने शुरू कर दी, LCD म्यूजिक गाना बजाना। अब क्या हुआ, अभी तो फरिश्तों को बुला रहे थे, बाहर खड़े हैं वो, अब दूसरी तरफ शैतीन भी आ गए। अब क्या हुआ, फरश एक तरफ एक सफ में फरिश्ते खड़े हैं, दूसरी तरफ शैतीन खड़े हैं, अब दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। अब देख रहे हैं बैठे, अबे भाई तो दोनों को क्यों बुला रहे हो, या तो फरिश्तों को बुलाओ या शैतानों को बुलाओ, क्यों कुश्ती कराते हो शैतानों की और फरिश्तों की। यानी मतलब ये कि वो अमाल करो जैसे फरिश्ते हैं शैतीन भागे, हम वो सिग्नल कोड यूज कर रखते हैं जिससे शैतीन वगैरह खूब भर के आए, शैतीन गंदे आए हमारे घरों में हमारे जिस्मों में हर चीजों में, और फरिश्तों की रहमत भाग जाए, फरिश्ते चले जाएं हमारे घरों से हमारी जिंदगियों से। तो एक टिकट में 2 मजे नहीं आते, कुरान पाक भी चल रहा है घर के अंदर और TV नाच गाना LCD भी चल रहा है, तो फिर वो बरकत नहीं होगी। तो कहते हैं मैं तो कुरान भी पढ़ता हूँ फिक्र भी कर रहा हूँ तब भी बेबरकती मनुष्यत खत्म नहीं हो रही, उस तरह वह नहीं जाता हराम कामों की तरफ। पत्नी कब जाएगा, किस तरफ जाएगा, नवा के वक्त जाएगा, मौत के वक्त जाएगा, कब जाएगा हमारा उस तरफ वहन। सिर्फ नेक अमाल पे थोड़ी बहुत नजर रखी, जो गुनाह हम करते रहते हैं गुनाह कबीर आदतन 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 सालों का, उस तरफ ध्यान ही नहीं। कैसे मसले हल होंगे गुनाहों को छोड़ने के बाद। नेक अमाल अलग चीज होते हैं, गुनाहों को छोड़ने का अलग चीज है। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तआला शानहु। तो मशायख फरमाते हैं जो अल्लाह वालों का सिलसिला बैत का इस्लाह का ताल्लुक का, तो इसकी बरकत से जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो ये बैत का सिलसिला जा रहा है, तो ये सिलसिले की बरकत से अक्सर शैतीन जो और जादू टोने वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। बरकत इतनी जबरदस्त होती है सिलसिले की, तकवा भी आदमी को नसीब हो जाता है, ठीक ना। लेकिन इस्लाह कराते रहना चाहिए। जितने लोग हमारे पास ऐसे आते हैं बेचारे, उनका आने का दिल नहीं चाहता अल्लाह के जिक्र में, बाज लोग होते हैं नहीं दिल चाहता, मजबूरी में आते हैं, लेकिन अगर वो 2-3 इतवार ना आए तो इन पर दोबारा शैतीन का हमला होने लगता है, तो घबरा के डर के दौड़ के आते हैं। यानी अल्लाह पाक उनको अगर पूरा सुकून दे दे तो वो पलट के शक्ल भी ना देखें, कौन सी मजलिस कौन सा अल्लाह का जिक्र, ये तो बेचारे फंसे हैं मजबूर हैं तो आ जाते हैं। सही है भाई, तो इसमें अल्लाह भी देख लेते हैं, ये प्यार का बंदा नहीं है डंडे का बंदा है, तो अल्लाह पाक भी क्या करते हैं कि हल्की हल्की उसके ऊपर छितर पड़ते रहते हैं उसके, जब तक सही चलता रहेगा तकवे से तो सही रहेंगे मामला, जहां जरा सा आउट हुआ छोड़ा अल्लाह को उसने और फिर दोबारा हल्के से चपक पड़ना शुरू हो गई, फिर दोबारा ट्रैक पर आ गए। जैसे खच्चरों को देखा ना चलते हैं तो जैसे ही वो ट्रैक से आउट होने लगते हैं तो जो चलाने वाले जो होते हैं गधे घोड़े वाले तो क्या करते हैं चाबुक मारते हैं, जैसे चाबुक मारता हूँ फौरन सीधा हो जाएगा सीधे ट्रैक पर आ जाएगा। तो बहुत से लोग अपनी जबल्लत अल्लाह को यही दिखाते हैं, अल्लाह मैं प्यार का बंदा नहीं हूँ, आप मुझको थोड़े थोड़े चाबुक मारते रहेंगे तो मेरी नवाजी भी दुरुस्त रहेंगी, मैं कुरान भी पढ़ता रहूंगा, मैं जिक्रुल्लाह भी करता रहूंगा, लेकिन आपने वादा कर मुझे मजे कराया ना याशी दी मुझे बस फिर मैं भूल जाऊंगा आपको। तो फिर अल्लाह कहते हैं हाँ मेरे बंदे तू मुझे क्या समझा रहा है, मैं तेरा खालिक और मालिक हूँ, तू मुझसे वादा कौन जानता तुझे, तो ठीक है फिर ऐसा तो ऐसी से। तो भाई एक बार अपनी अल्लाह को जबल्लत दिखा दें कि अल्लाह पाक कोई भी हाल होगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बस अल्लाह देख लेंगे वाकई हमारा बाबा का बंदा बन चुका है, फिर अल्लाह पाक हटा देते हैं सारी परेशानियां मुस्तकिल तौर पे, है ना। हम अल्लाह को रुख ही पेश नहीं करते, हम यही कहते हैं अल्लाह हम डंडे के बंदे हैं, डंडे के बंदे। कितने लोग हैं जो जिन भूतों की वजह से शैतान की वजह से, जिन्नात नहीं कहना चाहिए, जिन्नात बुरा भी मानते हैं क्योंकि जिन्नात में मुस्लिम गैर मुस्लिम शैतान सब होते हैं, और जिन्नातों में बड़े बड़े औली अल्लाह भी होते हैं, मुत्तकी अल्लाह वाले जिन्नात भी होते हैं, तो जिन्नात भी यही कहते हैं कि शैतान बोलना चाहिए, है ना। शैतान में खास स्पेसिफिक शैतान हो गए ये तंग करने वाले, और गैर मुस्लिम होते हैं काफिर होते हैं, शर इनमें ज्यादा होती है, तो इसमें इन चीजों से बचना चाहिए। ये थोड़ा सा कि ये आमाल का महावा मैंने आपको करके बता दिया भाई, हमारे घर घर जो हमारे हालात इस वक्त चल रहे हैं वो भी तस्वीर बनवाना और फोटो खिंचवाना, बहुत से लोग स्टेटस के ऊपर फोटो लगाते रहते हैं भाई, ये फोटोग्राफी शैतानी अफराद हो जाते हैं, उन्हें बचना चाहिए। और जिसके जो स्टेटस पे जो फोटो आए हैं ग्रुप में शक्लें मैं देखता रहता हूँ तो भाई उसको हटाइए, ये गुनाह कबीरा है हराम चीज है, तो फायदा है क्या उसको बतों में आने का अगर गुनाह नहीं छूट रहा है। तो इन चीजों से इज्तनाब करें, घर को अपने शैतानों से पाक साफ रखें, और कुछ अमाल बता दिए, और घरों में अगर किसी को घर में कोई शक होता है, घरों में कोई शक है किसी बद नजर का या बद अफराद का नहूफत का, तो एहतियातन ये सूरह बकरा की आयत है आयतल कुर्सी की, ये पढ़ लिया करें आयतल कुर्सी 11 बार सुबह को और 11 बार मगरिब के बाद, ये पढ़ के बोलो आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ घर का इशार कर दिया करें, उंगली घुमाए बीच में घर के बीच में और 3 दफा उंगली घुमा के फिर फूंक मार दीजिए, तो सुबह के अफराद की जो सुबह का दम के अफराद रहेंगे मगरिब तक, मगरिब तक खत्म, इसलिए हम रिन्यूअल जैसे किसी चीज को रिन्यू करते हैं मगरिब पर दोबारा एक दम और कर दें तो फिर वो फजर तक चलेगा इंशाल्लाह दम। तो ये शैतानी अफराद जादू टोने और डकैतियां चोर उचक्कों से हर तरह की शर्फ अल्लाह पाक इंशाल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, है ना। मफनून दुआओं का तर्जुमा है, जो हवाएं चलती है ना, तो रसूल अल्लाह सल्लम की एक दुआ पढ़ा था मफनून दुआ, जब तेज हवाएं चलें तो उस दुआ का तर्जुमा ये था कि अल्लाह जो हवाएं चल रही है इसके अंदर जितनी जो खैर छुपी है मुझे अता फरमा, और इन हवाओं के अंदर जो शर छुपी है उनसे मेरी हिफाजत फरमा। पता चला हवाओं के अंदर भी खैर और शर है, ये कोरोना वायरस हो गया जितनी भी बीमारियों के जो वायरस होते हैं वायरल इन्फेक्शन जो फैलता है ये हवा से तो फैलता है, 1400 साल पहले हमारे आका सल्लम फरमा रहे हैं कि दुआ पढ़ के रखो, तो ये बात छोड़ी हमारी पावत की आप सल्लम में, लेकिन हम सुन्नत पे चले तो सही, हम तो हमें तो दूसरे इंग्लिश स्टाइल पसंद है, कैसे मसाइल हल होंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू व तआला शान बस ये बयान मौकूफ करते हैं आखिर में, हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे जो भी ये 5 अमाल कर लेगा मरेगा नहीं उस वक्त तक जब तक अल्लाह पाक उसको अपना वली नहीं बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो भी 5 अमाल कर लेगा अल्लाह का वली बनेगा, मुत्तकी परहेज़गार बन जाएगा, और उसकी परेशानी गम तकलीफ भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इन 5 अमाल का ताल्लुक तकवे से है और इन 5 अमाल का ताल्लुक फराइज़ और वाजिबात से, नफली अमाल नहीं है इसमें, कि कर लिया तो सवाब है नहीं किया तो कोई मफसला नहीं, कंपलसरी है। पहला जो है कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने का एहतमाम करें, 2-2.5 महीने की मेहनत है, हफ्ते में 2-3 दिन भी किसी कारी साहब से पढ़ लिया आधा एक घंटा तो इंशाल्लाह हमारे कुरान पाक की तजवीद दुरुस्त हो जाएगी। नंबर 2, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, छोरी के दाएं से, छोरी के नीचे से और दाएं से और बाएं से, एक मुट्ठी ज्यादा तो उसको भले काट लिए, मूछें बिल्कुल बारीक रखें। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के 2 सफीर आए थे आप सल्लम के दौर में, उस जमाने में ईरान में आग की पूजा होती थी तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और दाढ़ियां मुड़ी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के नागवारी से नफरत से मुंह फेर लिया, गौर कीजिए गैर मुस्लिम है मुसलमान नहीं है, लेकिन उनका चेहरा देख के आप सुसलम से बर्दाश्त नहीं हुआ, नागवारी से मुंह फेर लिया। फिर उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया तो आपने इरशाद फरमाया कि तुमने क्या शक्लें बनाई हैं कि तुम दाढ़ियों को मुंडाते हो और मुझे रखते हो बड़ी बड़ी। तो उस पर उन्होंने कहा हमारे बादशाह ने हमें हुक्म दिया ऐसी शक्लें बनाने का। फिर आपने फरमाया लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कतरवाओ। आगे से आपने इरशाद फरमाया यहूद और नसारा की मुखालफत करो, बायकाट करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूछों को कतरवाओ, उन जैसी शक्लें ना बनाओ। आप ने आगे इरशाद फरमाया जो जिस कौम की शक्ल सूरत मुशाबियत अख्तियार करेगा, लाइफ स्टाइल अख्तियार करेगा, उसी के साथ उसका असर होगा। ये तीन हदीसों को मैंने रवानी से बोल गया हूँ। पहली हदीस क्या है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसी के साथ अशर होगा, जो जिस कौम की तादाद को बढ़ाएगा उसी के साथ उसका अशर होगा। तीसरी हदीस शरीफ है जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उसका अशर होगा। और इंसान किसकी नकल करता है, जिससे मुतासर होता है, जिसको अपने से अच्छा अपर क्लास का समझता है। तो हम किसकी नकल कर रहे हैं, हमारा हुलिया, हमारा जाहिर, हमारा घर का लाइफ स्टाइल, किसकी नकल हो रही है भाई, हुनूद की, यहूद नसारे की हो रही है ना, जो जिससे, क्योंकि किसकी नकल कर रहा है, जिसको अच्छा समझता है, जिसको कमतर हकीर समझता है, कोई इंसान उसकी नकल करता है, कोई नहीं करता, जिसको हकीर कमतर समझता है। तो ये लोग सुन्नत शरीयत से दूर है, पसंद नहीं कर रहे, वो हकीर समझ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को। बस फिर उसकी पादाश में देखें हम मुसलमानों का क्या हाल है, पूरे दुनिया में पिट रहे हैं, पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, कुत्ते बिल्ली से ज्यादा हमारा खून खराब हो चुका है, बेकीमत, कम हैसियत। मुसलमानों का खून जो है बेहतर है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुत्ते बिल्ली को वो मार दे, मुकदमा चल जाएगा, कुत्ते को कैसे आपने मारा। आज हमारा हाल तो आप देखें, वजह क्या है, यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी की वजह से, सुन्नत शरीयत की दूरी की वजह से पसंद नहीं करते मुसलमान हम लोग उस लाइफ स्टाइल को। ये मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, अक्सर, सब नहीं, अक्सरों का बहुत बुरा हाल है। इतने रिश्ते लड़के लड़की और लड़की वालों ने तोड़ दिए, बादशाह लोग दीनदार लोगों का बता रहा हूँ मैं, आज खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, जो भी दीनदार हैं, कामिल तक्वा वाले बहुत कम लोग हैं, कितने रिश्ते टूट गए, सब कुछ सही हो गया। क्या क्या कहा कि भाई मूवी तस्वीरें नहीं होंगी और ये फर्शी नशिस्त होगी, दस्तरखान जो है शादी में जो कुछ भी होगा ये जमीन पे दस्तरखान जो है सुन्नत के मुताबिक खाना लगेगा। दोनों पार्टियां दीनदार, बड़ी बड़ी दाढ़ियां माशाल्लाह, बड़े दीन के, क्या बोले बस। लेकिन जब अमल का वक्त आया तब का, इतने से छोटे छोटे से मुंह हो गए, पीले हो गई शक्लें, अब साफ मना कर दिया जी भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। अरे क्या नंगे फिरने को कह दिया, नऊज़ बिल्ला, यही तो कहे कि भाई दस्तरखान बिछा के जमीन पे बैठ के खाएंगे, ये रसूल अल्लाह सल्लम की सुन्नत है। तो आज मुसलमान खुद दीनदार लोग हमारों का अक्सर का क्या हाल है हमारे सामने, फिर हम बेदीन लोगों क्या रोएंगे। फिर कहते हैं कि अजाब क्यों आ रहे हैं, पेट्रोल 500 रुपए क्यों हो रहा है, ये जालिम हुक्मरान क्यों आ रहे हैं, बड़े शानदार हमारे माल चल रहे हैं ना भाई, इतने गुनाहों के बावजूद फिर भी अल्लाह की करम नवाज यही है। तो भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अमाल की तरफ आए। तो एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखें, ये यहूद और नसारा की शक्ल ना बनाए, गुनाह कबीरा है, लोग समझते हैं सुन्नत है, सुन्नत के साथ वाजिब है एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, चारों इमामों का जुमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। तीसरा अमल है मर्दों के लिए असला मिनल काबैनी मिनल इबारे फिन्नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मर्दों के लिए दो सूरतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब चल रहे हो खड़े हो, बैठे लेटे तो भले छुप जाए, चल रहे हो खड़े हो टखने खोल के रखना वाजिब है, नहीं तो वो हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा, वाजिब है टखने खोल के रखना। पैंट भी अगर पहनिए उसको फोल्ड कर ले, सिर्फ ये नमाज का हिस्सा नहीं है। तीन अमाल होगा, चौथा अमल क्या है, नजरों की पावत। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज़ निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और ख़वातीन को अलग हुक्म दिया, आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो भी अपनी नजरों की हिफाजत करें, बाज़ निगाहों की और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह पाक रसूल अल्लाह सल्लम के जरिए से कहलवा रहे हैं दो बड़ी हस्तियां, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दो डबल अंजन अगर फरमाया, डबल अंजन लगवाए, वरना कितने ऐसे कमाते अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के हुक्म जारी कर दिया ईमान वालों, लेकिन यहाँ रसूल अल्लाह सल्लम को बीच में डाल रहे हैं। देखो एक तो मैं कह रहा हूँ, फिर तुम्हारे नबी तुमसे कह रहे हैं, दो बड़ी हस्तियां तुमसे कह रही है, अगर आशिक रसूल हो तो मान जाओ इनकी बात, मेरी बात पहले फिर तुम्हारे नबी की बात है, कितना अल्लाह ने पावर डाली है। लेकिन आज बदनफरी को छोड़ रहे, कौन छोड़ता है औरतों को? नगर आ जाए कोई औरत, देखें आप क्या बोले उस। और आगे चलिए, आप उसने शायद क्या फरमाया, लान नाजिरा मंजूर है ली। ये मौलवी साहब की बातें नहीं हो रही, अब तक कुरान हदीस की बात हो रही। लान नाजिरा मंजूर है, रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं कौन, इमामुल अंबिया जिनकी नहीं कायनात बनी, अल्लाह उस पर लानत फरमा जो नामहरम औरतों के साथ बदनजरी करे, नामहरम औरतों की तरफ देखे, बदनजरी करे, अल्लाह उसको लानत, अल्लाह उसको लानत अता फरमा। लानत का क्या मतलब होता है, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, बद्दुआ की लपेट में आ जाते हैं। और आगे उन औरतों पर भी लानत आ रही है कि जो अपने आप को बदनजरी के लिए पेश करती है, नामहरमों के सामने, मर्दों के सामने आ जाती है मुंह खोल के। लानत नाजिरा मंजूर, के अल्लाह पाक जो बदनजरी करे उस पर भी लानत भेज, और जो अपने आप को बदनजरी के लिए पेश करे अल्लाह उन पर भी लानत भेज। ये भाई तो ये नजरों की हिफाजत करें, और पांचों जो अमल है दिल को बिल्कुल पाक साफ रखें गंदे ख्यालात से, दिल को शैतान दिल में गंदे ख्याल डालता रहता है, अलग मामला है, उसमें आदमी गुनाहगार नहीं होता, मसरूफ हो जाए, वजू करने, किताब पढ़ने लगे, लेकिन जानबूझ के दिल में गंदे ख्याल लाना जमाना ये सही नहीं है। उन पांचों माल की तौफीक कैसे होगी, एक एक करके किसी भी अल्लाह वाले से उसे इस्लाही ताल्लुक कायम कर लें जहां मुनासबत हो, तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में एक एक करके पांचों माल की तौफीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या रब्बे करीम या अरहमर रहीमीन। या अल्लाह जो कुछ भी बोला गया सुना गया अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह ये हमारा मिल बैठना जो तेरी रजा तेरी खुशी की नहीं है अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और इंशाल्लाह हम सब की कामिल मगफरत फरमा। या अल्लाह हाजरीन मजलिस में से जिसके दिल में जो भी जायज़ हाजात हैं अल्लाह तू जानने वाला है, हम सब की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जिसके अल्लाह जो भी आए महरूम न जाए, दुनिया भी बना दे आखरत भी बना दे। या अल्लाह जो भी दिल में हमारी ख्वाहिशात हैं कि जो भी अल्लाह तू जानने वाला है अल्लाह किसी एक को भी महरूम ना करो, सबके गमों को तकलीफों को बीमारियों को परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा दे। अल्लाह जो तेरी याद में आया जो जो हाजत लेके बैठा अल्लाह हम सब की हाजतों को पूरा फरमा दे। या रब्बे करीम अपने जिक्र पाक की बरकत से अल्लाह में महरूम ना फरमा। या रब्बे करीम जितने भी बीमार हैं उन सबको शिफा कुल्ली नसीब फरमा। अल्लाह जितनी मुसीबत हो रहा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। जितने भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जितने भी मुफलिस नादार गरीब हैं अल्लाह उनको हलाल से गनी फरमा। या अल्लाह जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही जल्द से जल्द बेहतरीन जगह उनकी शादी कराते जहाँ दीन दुनिया की भलाइयाँ आफियतें अहले मोहब्बत उनको रिश्ते और शोहर अता फरमा। या रब्बे करीम या अरहमर रहीमीन जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है फोन के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर या जो कहना चाहते थे कह नहीं सके अल्लाह तू ही जानने वाला है सबके दिलों के हाल से हाल को। अल्लाह सबके गमों तकलीफों को बीमारियों को परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह सबको चैन ठंडक सुकून आफियत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको कामिल तक्वा नसीब फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहूदियों के कैद में जितने भी मुसलमान भाई बहन अल्लाह पाक कैद हैं अल्लाह उनको फांसियाँ दे रहे हैं अल्लाह पाक उनको मार रहे हैं उनकी इज्जतें लूट रहे हैं अल्लाह उन खबीसों की शर से तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनको इज्जत आफियत के साथ रिहाई दिला दे। तमाम उम्मती मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या रब करीम या अरहमर रहीमीन काबतुल्ला शरीफ रोहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुकाम मुकद्दस की हिफाजत फरमा। आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। तमाम उम्मती मुस्लिमों को एक और नेक कर दे। या अल्लाह ये जो हमारे गुनाहों की से महंगाई का अजाब आ गया अल्लाह इसको ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह पेट्रोल के रेट को इंतहाई कम कर दे इंतहाई कम कर दे इंतहाई कम कर दे महंगाई को इंतहाई कम कर दे। या रब्बे करीम और जो भी ज़ालिमाना फैसले हो रहे हैं अल्लाह उसको ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह में इकरारी मुजरिम है या अल्लाह अपने खुले दिल से अपने गुनाहों को इकरार करते हैं। या अल्लाह तू करीम और रहीम है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे माफ़ फरमा दे। वक़ुर रब्बि इग़फिर वरहम अंता खैरुर रहीमीन। या रब करीम या पाक परवरदिगार। या अल्लाह मेरे वालिद साहब की और मेरे मुर्शिदीन की और हमारे जुमला मरहूमीन की कुल मोमिनीन मोमिनात की कुल जिन्नात की और अल्लाह पाक मेरे सास ससुर की सब की कामिल मगफरत फरमा। सबको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा। या अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Thank you.